দলের শব্দ শোনা যায় আমার গোর এলো রে, গোর এলো রে সোনার নদী আয়, হরির ধ্বনির হরির দলের শব্দ শোনা যায় আমার গোর এলো রে, বলো গোর এলো রে সোনার নদী আয়, হরির ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গোর এলো রে, গোর এলো রতে চরে সে যে নারায়ণ, গোর এলো রতে চরে সে যে নারায়ণ, ও আমার হৃদয়ে পেতে রেখেছি, ও আমার হৃদয়ে পেতে রেখেছি ফুলের সিংহাসন আমার গোর এলো রে, বলো গোর এলো রে সোনার নদী আ, ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো রে, বলো গৌর এলো রে সোনার নদী আয়, হলুর ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো রে, গৌর আমার মাতা পিতা অকুল কাণ্ডারি, গৌর আমার মাতা পিতা অকুল কাণ্ডারি, তোমরা নাম করো জপ করো, নাম করো জপ করো, নাম করো জপ করো চরণ করো সাথ আমার গৌর এলো রে, বলো গৌর এলো রে সোনার নদী আয়, হলুর ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো, বলো গৌর এলো রে সোনার নদী আয়, ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো রে, বলো গৌর এলো রে সোনার নদী আয়, ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায় আমার গৌর এলো রে, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, মাধব কুঞ্জ বিহারি, গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধারি, জয় গোপী জন বল্লভ গিরিবর ধারি, যশোদা নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যমুনা তীর বনচারি, যমুনা তীর বনচারি, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ सब लोग बोलिए भगवान का नाम। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे हरे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलो नीताई गौरांगो नीताई गौरांगो, बोलो नीता 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 नीताई गौरांगो, बोलो नीताई 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 गौरांगो, नीताई गौरांग बोलो गौरा हरि, नीताई गौरांग बोलो गौरा हरि, हे गौरा 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 हरि, गोरा 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 हरि, जय सचिनंदन गोरा हरि, जय सचिनंदन गोरा हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन गोरा हरि, बोलो विष्णु प्रिया प्राण धन गौरा हरि, बोलो विष्णु प्रिया प्राण धन गौरा हरि, गौरा 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 हरि, जय सचिदानंदन जय सचिदानंदन सचिदानंदन जय सचिदानंदन, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল গৌর প্রেম আনন্দে হরি হরি বল জয় বিষ্ণুপাদ পরম পরিব্রাজকাচার্য স্তোত্র শ্রীমৎশীল অভয় চরণবৃন্দ ভক্তিবিলাস স্বামী শিল গোপাল কি ইসকন বিউটি ফাউন্ডেশন শিল গোপাল কি জয়ং বিশ্ববাদ পরম পরিব্রাজকাচার্য স্তোত্র শাস্ত্রী শিব শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী ঠাকুর শিল গোপাল কি যায় সচিদানন্দ শিল ভক্তিবিন্দ ঠাকুর কি যায় নামাচরী শিল হরিদাস ঠাকুর কি যায় অনন্ত করি বৈষ্ণববৃন্দ কি যায় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দের হরি হরি বল শ্রীচিরাধাগিরিধারী ভগবান কি যায় জগন্নাথ বলদেব সুব্রত মহারানী কি যায় জগন্নাথ গৌর কথা কার্যক্রম কি যায় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দের হরি হরি বল ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति মুখম করতি বাচলম পুঙ্গুম লঙ্গতে গিরিম যৎকৃপাতমহম বন্দে পরমানন্দ মাধবম জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত জয় জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত জয় জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ হরে কৃষ্ণ। ইস গৌর কথা কার্যক্রম আজকে দুসরা দিন হ্যাঁ কাল আমরা চর্চা কিয়েছি কি অনবসকাল মুহূর্ত উপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আলাল নাথ মে ডুব গে থে ইস 15 দিন কো কে কি অনবসর কাল মুহূর্ত আর ইস অনবসকাল মুহূর্ত বাদ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নেত্র উৎসব কর দিন জগন্নাথ পুরী মে আয়ে জগন্নাথ জি কো দর্শন করলে কে লিয়ে উসকা পহলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জব জগন্নাথ পুরী মে আহ তো উসকে পহলে উনকা অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদ জিসকে উপর মানে কাল চর্চা ভি কী থি সার্বভৌম ভট্টাচার্য তো সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কা অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদ জিনকো কহতে কি পার্সোনাল সেক্রেটারি পিএ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রী সার্বভৌম ভট্টাচার্য আর রাজা প্রতাপ রুদ্র দোনোনে বার্তালাপ চালু কি প্রতাপ রুদ্র কা মন মে হ্যাঁ কি মানে ইতনা দিন তক মানে মহাপ্রভু কো মানে মহাপ্রভু কা ইস লীলা কা বারে উনকা তত্ত্ব কা উপর মানে বহুত কুছ সুনা হুঁ লেকিন আজ তক মানে উনকো দর্শন নেই কর পায়ে হৃদয় বিকলিত হইল তব আর তারও দর্শন বিনা কই কিছু আর রাজা প্রতাপ রুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্য যাকে কহলে লাগে কি আপ মেরে কো কম সে কম এক বার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কো দর্শন করাও তো সার্বভৌম ভট্টাচার্য কহনে লাগে মানে তো বহুত বার প্রয়াস কিয়া হুঁ লেকিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বীরপ সন্ন্যাসী এই বীরপ সন্ন্যাসী কা অর্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চেতন চেতন ব্যাখ্যা কি হে কি বীরপ সন্ন্যাসী কা অর্থ হতো হ্যাঁ কি মহাপ্রভু এইসা এক মহান সন্ন্যাসী যো কি কিসি কো বাত নেই শুনতে থে কবি আপনা হৃদয় মে যো ভি কুছ আতে থে ওই ও কর দেতে থে লেকিন দুসরে প্রশ্ন মে আয়ে কি মহাপ্রভু কহনে লগে জব উনকা পার্ষদ বৃন্দ সব এক সাথ হো গয়ে কি মহাপ্রভু মে আপকা সঙ্গ লেনা চাহতা হুঁ মহাপ্রভু কহনে লে কি এ দেহ তোমাকার হইল তুমি যা কইবে আজি বহি বসইব বলতে এ দেহ মেরা নেই ইয়ে দেহ সব আপকা হ্যাঁ আগর আপ লোক জো ভি কুছ চাহে মে করনে কে লিয়ে তৈয়ার तो दो तरीका का तात्विक शब्द आ गए सामने। एक तो पहले सार्वभौम बच्चे ने बताया कि ये विरक्त सन्यासी, मतलब कभी ये किसी का बात भी नहीं सुनते। आज दूसरा आए पॉइंट कि जिसमें स्वयं महाप्रभु कहने लगे कि ए देहो तोमाकार होइलो, तुम्ही जा कोई भी आमी कोड़ी मुशोबाकारित हो, बोलते ए देहो मेरा नहीं है, ये आपका है, अगर आप जो भी कुछ बोलोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रतापादित्य को विश्लेषण करे इसी बात को कि देखो मैंने बहुत प्रयास किया था कि आपको साथ मिलाने के लिए, लेकिन वो विरक्त सन्यासी है, कभी भी कोई गृहस्थ व्यक्ति के साथ जाना मिलने के लिए उसका मन में विचार नहीं रहते। आज विशेष रूप से आपका नाम का पहले एक शब्द होते हैं जिसका नाम है राजा प्रताप, सन्यासी होइया करो ना करो विचार। तो सन्यासी के सामने कोई राजा को मिलना ये शोभा नहीं देते। तो राजा प्रताप ने बड़ा दुखी हो गए सुनकर ये बात, कहने लगे कि आप मेरे को कुछ सलाह बताओ कि किस तरीके से मैंने ये महाप्रभु को मैं मिल सकता हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बताया कि आप दुखी मत रहो, थोड़ा समय बाद, थोड़ा दिन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ये पूरी पुरुषोत्तम क्षेत्र में आ रहा है, तो मैंने एक योजना बनाया हूं। तो राजा प्रताप ने कहने लगे कौन सा योजना आपने बनाया है, आप मेरे को जरा बताओ। मैंने एक योजना बनाया कि जितने सारे भक्त आ रहे हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र का भक्त, मैं सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलाने के लिए मैंने प्रयास करूंगा। तो राजा प्रताप रुद्र ने बड़ा खुश हो गए बात सुनकर, कहने लगे तो बहुत अच्छा बात आपने बताए, तो मेरे को भी एक बार मौका दो कि मैं भी थोड़ा महाप्रभु को दर्शन करना चाहता हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कि ठीक है मैं तो प्रयास करूंगा, लेकिन उसका पहले मेरे को एक काम करना है कि महाप्रभु आने का पहले उनको रहने के लिए एक जगह का बंदोबस्त होना चाहिए, ऐसा कोई जगह होए कि जहां पे जाकर महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर के नजदीक में वो जगह हो जाए। राजा प्रताप रुद्र कहने लगे उत्तम कथा तुम्ही कहिले तो आर, तुम्हारो वार्ताएं आज मन भरी नो आमार। अरे अरे आपने तो बहुत अच्छा वार्तालाप किए मेरे साथ, आज बहुत अच्छा बात भी आपने बताया, मैंने आपको एक सलाह दे रहा हूं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को रुकने के लिए जो बहुत ही सुंदर जगह मैंने आपको दे रहा हूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कहो कहो प्रताप रुद्र की बा मने तोमार, तुम्हारो मनेरो विचार आजी कोई नु सबर। कहने लगे आप तो मेरे को बताओ कौन सा जगह आपने चुने हो। तो राजा प्रताप रुद्र कहने लगे आमी एक वार्ता कही सुनो मन दिया तुम्हारो मनेरो अंतरे तो बोलते मैंने आपको एक वार्तालाप दे रहा हूं सुनो अच्छे तरीका से। बोलते क्या है बताओ आप। बोलते जगन्नाथ मंदिर का एकदम नजदीक में काशी मिश्र का घर है, तो काशी की मिश्र का घर में जाकर आप महाप्रभु को रुका सकते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कि आपने तो बड़ा अच्छा बात बताया, तो ठीक है तो चलो हम लोग काशी मिश्र का घर में हम लोग जाते हैं पहले। तो राजा प्रताप जो कहने लगे ठीक है, इस वार्ता को मैंने अपना व्यक्ति के द्वारा काशी मिश्र के पास मैंने भेज रहा हूं इस वार्ता। तो किस तरीका से काशी मिश्र के साथ उनका वार्तालाप हुआ था, इसमें चैतन्य चैतन्य इसका वर्णन किया है कि कहने लगे राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी केने गेला, भट्ट कहे महंतेर एई तो एक लीला, वैष्णवेर एई हय एक स्वभाव निश्चल, देह जीव नहे नयन स्वतंत्र ईश्वर। तो राजा प्रताप रुद्र तो पूछने लगे सार्वभौम भट्टाचार्य को कि महाप्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, हर समय कभी इधर कभी उधर, कभी जगन्नाथपुरी कभी दक्षिण भारत, ऐसे क्यों घूम रहा है, मैं उनके लिए अच्छे तरीके से बंदोबस्त कर देता हूं इधर ही रहने का। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे तुम्ही तो जानो ना किछु ताहारो कार्यकलाप, तिनी तो स्वतंत्र ईश्वर ताहाते नाही वार्तालाप। बोले आपको उनको पता नहीं है,
वो एक स्वतंत्र ईश्वर है, उनका मन में जो भी कुछ रहे वो कर सकते हैं। तो प्रतापरुद्ध कहने लगे कि ठीक है, तो महाप्रभु को आने दो। तो महाप्रभु पूज गए दक्षिण भारत से जगन्नाथपुरी में, सार्वभौम भट्टाचार्य अधिक से अधिक सब पुरुषोत्तम क्षेत्र का भक्त लोग को लेकर महाप्रभु को स्वागत करने के लिए गए सार्वभौम भट्टाचार्य। लेकिन प्रतापरुद्ध नहीं गए साथ में, शुरुआत में प्रतापरुद्ध नहीं गए थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े अच्छे तरीका से श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वागत वगैरह की। स्वागत करने के बाद महाप्रभु कहने लगे, सुनो सुनो सार्वभौम, मोनेरो एक ही कथा, जगन्नाथ दर्शन बहिबे मोर व्यथा। कहने लगे, सुनो सार्वभौम, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को पहले आप जगन्नाथ को दर्शन कराओ। जगन्नाथ दर्शन बिना नाही किछु आर, ताहारो दर्शने आजि हृदय मोहित आमार। कहने लगे, मैं अगर जगन्नाथ को मैंने दर्शन कर लिया ना तो मेरा हृदय मोहित हो जाता है। आप मेरे को पहले जगन्नाथ जी के पास लेकर चलो, मैं पहले जगन्नाथ जी को दर्शन करके आ जाता हूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपना पार्षद बिंदु को सबको लेकर गए जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। स्वाभाविक रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में जाते थे जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, गरुड़ स्तंभ के सामने खड़ा होकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करते रहते थे। तो जिस दिन महाप्रभु गए, एक तो महाप्रभु को सबको मिलना है, महाप्रभु को दर्शन करने के लिए सब लोग आए। जितना पुरुषोत्तम क्षेत्र में गौड़ीय वैष्णव संपदा है सब लोग आए, बंगाल से भी बहुत सारे भक्त लोग आए, महाप्रभु को भी मिलना है और फिर जगन्नाथ जी को भी दर्शन करना है। इस भावना में पूरा मंदिर में एकदम जनता भर गए उसमें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु गुरुर स्तंभ खड़ा होकर, गुरु स्तंभ का सामने खड़ा होकर उन्होंने जगन्नाथ जी को दर्शन कराया। ठीक उसी समय एक उड़िया महिला, एक भक्तिन, एक उड़िया महिला भक्त आ गए। उनका प्रेम भाव से वो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन वो जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं कर पाते। उन्होंने आचना क्या किया कि महाप्रभु का स्कंध में, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, महाप्रभु का स्कंध में अपना पैर रखकर गुरु स्तंभ को पकड़कर उन्होंने जगन्नाथ जी को करना चालू किया। इस दृश्य को देखकर महाप्रभु का जो आप तो सहायक जिसको बोलता है कि सेवक, सेवक गोविंद में एकदम आश्चर्यित हो गए। अरे ये महिला क्या कर रही है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का स्कंध में पैर रखकर वो जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे। उसमें वर्णन की है, ओड़िया एक स्त्री भीड़े दर्शन ना पाइया, गोरुरे चोरी देखे प्रभुर स्पंदे पद दिया। चैतन्य चैतन्य इसका वर्णन किया कि ओड़िया एक स्त्री भीड़े दर्शन ना पाइया, गोरुरे चोरी देखे प्रभुर स्पंदे पद दिया। तो एक उड़िया माता जी जो कि भक्तिन है, तो जगन्नाथ जी के विरह में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इतना दिन तक उन्होंने दर्शन नहीं की, तो दर्शन करने के लिए उनका मन में इतना प्रेम विरह भाव रासो रंभा लितो शोधुत्तनाया। रूप गोस्वामी पाद इसको वर्णन कर रहे हैं, रासो रंभा लितो शोधुत्तनाया। तो इसी भावना में प्रेम और रस सदीप भया, मतलब प्रेम और रस भाव लेकर और उड़िया महिला उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के स्कंध का ऊपर अपना पैर रखकर गुरुर देव को पकड़कर, गुरु स्तंभ को पकड़कर उन्होंने दर्शन करना चालू किया। सब लोग आश्चर्यित हो गए और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सेवक गोविंद, गोविंद से आश्चर्यित नहीं हो गए और क्रोधित भी हो गए थे। बोले अरे क्या कर रहे हैं इन्होंने, श्री चैतन्य महाप्रभु का स्कंध में पैर रखकर उन्होंने दर्शन करना चालू की। तब उन्होंने कहने लगे, अरे आप उतरो, आप उतरो। तब महाप्रभु गोविंद को बोला कि नहीं नहीं, इसमें बहुत सुंदर वर्णन की है, आदि वर्षा ऐसी स्त्री के ना करो वर्जन, कोरुक यथेष्ट जगन्नाथ दर्शन। तो जब गोविंद माना कर रहे कि अरे आप उतरो नीचे, महाप्रभु का स्कंध में पैर रखकर गुरु स्तंभ को पकड़कर अपने जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं, शोभा नहीं देते आपके लिए। प्रेम विरह भावे तब दर्शन करे यार, দর্শন ভাবে নাহি তার কিছু অন্য চিন্তা আর। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করে কি উড়িয়া মাতাজী কা মন মেয়ে ভাবনা আ গাই ও উনি সোচ রা ইসি তরিকা সে কি মেরা মন মে কুছ নহীঁ হ্যাঁ মেরে পাশে কিছু ভি তরিকা আছে মেরে কো জগন্নাথ জি কো দর্শন করনা হ্যাঁ। তো মহাপ্রভু কলে কি আদি বর্ষা এই স্ত্রীকে না করো হো বর্জন করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দর্শন। যা গোবিন্দ মানা কর রে কি আরে আপ উত্তর নিচ্ছে লেকিন মহাপ্রভু উনকে গোবিন্দ আপ কুছ মত বলো ও আদি বর্ষা রূপ সে উনি জগন্নাথ জি কো দর্শন কর রে উনকা দর্শন করনে কো ইস আদি বর্ষা কথা ইস শব্দ কো কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লোচনদাস ঠাকুর বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বহুত হি আচ্ছে তরিকা সে চেতন ভাগবত চেতন মঙ্গল আর চেতন চৈতন্য বর্ণন কি আদি বর্ষা এই স্ত্রীকে না করো বর্জন। আদি বর্ষা কা অর্থ হতা হ্যায় জো কি ভগবান কা সবসে নজদিক বালে উসকো কহতে কি আদি বর্ষা জিসকা নাম রাখা হ্যায় লোচনদাস ঠাকুর নে প্রিয়া প্রিয়ামন হু ইজ ভেরি ডিয়ারেস্ট টু মি जो कि सबसे ज्यादा भगवान का एकदम पसंद वाले उसको कहते कि प्रिया प्रिया तब नाम हुई लो कहू को तुम्हार तमाम को कहने की गोविंदो आप चुपचाप शांत हो जाओ आदि वर्षा यही के ना करो हो बर्जन। जिन्होंने इस भाव से जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं उसको आप दुखाओ मत कर दीजिए। उन्होंने कितने भाग्यवती है कि देखो जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए उनका मन में प्रेम और रोष संचारो तब यार वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे इसी अवस्था को प्रेम और रोष संचारी तब आज प्रेम रोष भाव लेकर भाग्यवती महिला ने जगन्नाथ जी को दर्शन कर रही है। आज दूसरे भक्त सोच रहे कि कितना अपराध हो रहा है इनका जिसके लिए महाप्रभु महावदन होता है। हे रूप गोस्वामी बात वर्णन की नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमो। आप नम आप महावदन्य अवतारा आप जगत को कृपा करने के लिए इसी धराधाम में आपने भक्त रूप लेकर आपने को अवतरित कर दिया। किस तरीका से श्री चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में आपने को प्रकटित किए थे स्वपार सदस्य धाम सह अवतरी अपना पार्षद बिंदु को लेकर आए इसी धराधाम में जैसे कि अद्वित आचार्य प्रभु नित्यानंद प्रभु श्रीनिवास पंडित गदाधर पंडित एक से एक गौड़ीय भक्त बिंदु को उन्होंने अपना लीला में भाग लेने के लिए सबको उन्होंने अलग अलग जगह में उन्होंने प्रकटित करा दिया। कहां है मायापुर जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था और शांतिपुर धाम में अद्वित आचार्य प्रभु जन्म लिए अद्वित आचार्य सिपा शांतिपुर धाम गदाधर मंदिर कहां रुके थे नित्यानंद प्रभु कहां है एक चक्र धाम सब जगह में अपना अपना पार्षद को लेकर उन्होंने प्रकटित कराए लेकिन महाप्रभु का लीला में सबको उन्होंने लेकर आए कहां पे ना सीधा मायापुर गोविंद गौरांगेर संगी गणे নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে যায় ব্রজেন্দ্র সুতপাস আমরা আচার্য লিখতে হ্যাঁ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণন কি সরি নরোত্তম দাস ঠাকুর বর্ণন কি গৌরাঙ্গের সঙ্গী গণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে সে যায় ব্রজেন্দ্র সুতপাস জিতনে ভি পাপী পাখণ্ডী ব্যক্তি হো আগর ইস গৌরাঙ্গ সঙ্গী গণ কা লীলা কথা কো আগর শ্রবণ করে ধ্যান সে ইস লীলা কো আগর আচ্ছে তরিকা সে অধ্যয়ন করে इसी जीवन में कहां पहुंच सकते हैं भगवान का धाम तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए आचार्य कहते हैं गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कोड़ी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पार। इसके लिए गौरांग महाप्रभु के जो नित्य सिद्ध पार्षद सबका लीला कथा श्रवण करना है क्योंकि नित्य सिद्ध वही हो सकते हैं जो कि हर समय भगवान का बारे स्मरण करते रहते हैं। सोची माता नित्य सिद्ध जगन्नाथ मिश्र नित्य सिद्ध क्योंकि हर समय वो सोचते रहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमारा घर में जो निमाय रूप लेकर आए ऐसा कोई ये मामूली बच्चा नहीं है। जन्म होने के बाद जब नीलम चक्रवर्ती ठाकुर मतलब सुची माता पिताजी जब बच्चा को देखने के लिए आए तो देखा कि उनका पायल में 24 प्रकार का शुभ लक्षण है, शुभ चिन्ह है, सिम्टम जिसको बोलते हैं। तत्कालीन समय में नीलम चक्रवर्ती ठाकुर एक महान बड़ा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने देखकर ही पता चल गया कि ये जो बच्चा आए ना ये बच्चा ऐसा कोई मामूली बच्चा नहीं है। हर तरीका से उनका पूरा शरीर में से पैर में नहीं हर जगह पे उनका शुभ लक्षण, लेकिन एक लक्षण नीलम चक्रवर्ती ठाकुर किसी को नहीं बताए जिस लक्षण का नाम है हस्मसरह। जिस हस्मसरह लक्षण के द्वारा इस हस्मसरह का अर्थ होता है जिसका शरीर में इस चिन्ह रहते हैं वो बच्चा कभी घर में नहीं रह सकते, उसको घर जरूर उसको त्याग देना है और उनको संन्यास लेना है। तो नीलम चक्रवर्ती ठाकुर ये बात को कभी भी ना सुची माता को बताए ना जगन्नाथ मिश्र को बताए, लेकिन वो शौक हो गए थे देखकर जी इतने सुंदर बच्चा है। उसमें वर्णन किया है कि आ जानो लंबी तो बाहु जुगो, 24 प्रकार का गुण का वर्णन किया है शास्त्रों में। तो नीलम चक्रवर्ती जब वो चिन्ह देख लिए तो उनका मन में दुख आ गया, लेकिन इस दुख का कारण क्या है उन्होंने कभी सुची माता को ना बताया ना जगन्नाथ मिश्र को बताया, लेकिन उनको पता था कि ये मामूली बच्चा नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं और गुरु स्तंभ का सामने खड़ा होकर जब उन्होंने दर्शन चालू की तो माता जी आकर अपना स्कंद में चल गई, गोविंद ने माना किए, गोविंद ने उन्होंने रुखा दिया। महार तो सेवक हो तब कोई लाम हो किचु आज तुम्हार स्कंधे पे आजी भारी नहीं तुम्हार। फिर भी गोविंद महाप्रभु को बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी उन्होंने बहुत चिल्लाए अरे आप उतरो उतरो आप उतरो नीचे उतर जाओ, क्या कर रहे हो आपका कितना अपराध लाग रही है। तो महाप्रभु कहने लगे एतो आरती जगन्नाथ मोरे नाही दिला, एतो आरती जगन्नाथ मोरे नाही दिला। तो गोविंद को जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभु समझा रहे गोविंद आप क्यों उसको माना कर रहे हो, वो ऐसा कोई मामूली नहीं है। गोरुरे चोरी जाके प्रभुर स्कंधेर पद दिया, क्योंकि वो आदिवश्या नारी आदिवत्ता स्त्री के ना कर हो वर्जन। देखिए इसमें दो पॉइंट आते हैं, इसमें बहुत सुंदर चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर इसको वर्णन किए कि महाप्रभु परम सन्यासी जन शिक्षक लोक शिक्षक जागतिक व्यक्ति को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने यह सन्यास धर्म दिया। नीतीश कलीजी भी उनके सन्यास लेने का कोई जरूरी नहीं, क्यों उन्होंने सन्यास लिए न सन्यास लेने का एक ही कारण था कि जिस कारण के लिए मैंने इस गली युग में अपना पार्षद को लेकर मैंने प्रकटित हो उस कारण का मैं बराबर नहीं कर पाता, जिसके लिए मैंने कोई जरूरी है सन्यास लेना। जब उन्होंने मन में विचार कर लिया कि मेरे को अभी सन्यास लेना है तो पहले उन्होंने बताया सौरदमन को जाकर बताया, लेकिन सौरदम किसी को नहीं बताया, ना सुची माता को पता हो गए थे ना उनका धर्म पत्नी को पता हो गया विष्णुप्रिया देवी को, लेकिन फिर भी हृदय का अंदर से पता हो गए थे विष्णुप्रिया देवी को। जब संन्यास लेने का पहला दिन महाप्रभु घर में पहुंच गए सांध्यकालीन समय में, सांध्यकालीन गोधूली लग्न में इसका वर्णन किया है शास्त्र में, जिस गोधूली लग्न में जब पहुंच गए थे महाप्रभु अपना घर में तो विष्णुप्रिया देवी कहने लगे सुनो सुनो प्राणनाथ मोर शिरे दिए हाथ सन्यास लइबे ना कि तुमि। तो महाप्रभु का सामने धर्म संकट उपस्थित हो गए कि आपना धर्म पत्र विष्णुप्रिया देवी इसको मैं कैसे बता सकता हूं कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं सन्यास लेने के लिए, आज इनका सामने झूठ बोलने में मेरे लिए अपराध लगता। तो विष्णुपद भी कहने लगी कि सुनो सुनो प्राणो नाथ मोर शिर दिए हाथ सन्नासो लोइबे ना कि तुमी। तो उनका सामने धर्म संकट, एक तो अपना धर्म पत्नी जिसको मैंने धर्म को साक्षी लाकर मैंने शादी विवाह की, उनका सामने मैंने कैसे झूठ बोल सकता हूं। आज अगर मैंने सच्ची बात भी बोल दी तो सहन करना उनके लिए मुश्किल है। तो महाप्रभु कहने लगे, जगते जते के देखो मीठा कोड़ी सब लेखो सत्य एक सबे भगवान नाम तोर विष्णु प्रिया सार्थक करो दिया। तो महाप्रभु दुष्ण भावना में उनको समझाने के लिए प्रयास कर, जगते जते के देखो मीठा कोड़ी सब लेखो सत्य एक सबे भगवान, इस जगत में आप जो भी देख रहे हो ना सब झूठ है, कोई भी चीज सच्चा नहीं है। व्यक्ति अपना स्वार्थ के कारण कितने सारे झूठ बोलने के लिए प्रयास कर रहे हर समय। इसके लिए जगते जते के देखो मीठा कोड़ी सब लेखो सत्य एक सबे भगवान, जगत में आप जो भी कुछ देख रहे हो सब झूठ है, लेकिन एक ही सच्चाई है वो है भगवान। नाम तोर विष्णु प्रिया सार्थक करो दिया, भले आपका नाम विष्णु प्रिया है, विष्णु का धरणी हो, विष्णु का पत्नी हो आप, आपका नाम को आप सार्थक बनाओ। कैसा है श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने इस कली युग में अपना कार्य सिद्धि के लिए सन्यास नहीं लिए थे। जगतेरे उद्धारो लागे नंद सुत हरि, जगत को उद्धार करने के लिए उन्होंने सन्यास लिया। और वही श्री चैतन्य महाप्रभु जब गुरु स्तंभ पकड़कर गुरु स्तंभ में सामने खड़ा होकर जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे हैं, तो माता जी सामने आ गई, आपका स्कंद में पाए रख दिए, तो गोविंद ने सोच ली कह रही है तो उनके लिए धर्म संकट है। कोई अगर देख ली थी सन्यासी के स्कंद में कोई महिला ने पा रख दी तो क्या होगा सन्यासी का हाल। फिर भी महाप्रभु कहने लगे कि आदि वर्ष स्त्री के ना करो वर्जन। इस आदि वर्ष का अर्थ लोचनदास ठाकुर चैतन्य मंगल ग्रंथ में वर्णन की इसको, कि आदि वर्ष का अर्थ होता है जो कि एकदम भगवान का नजदीक में, जो कि भगवान का एकदम सबसे प्रिय होता है। आदि वर्षा एक ना करो वर्जन ताओ तुम्हें दारे शुद्ध जगन्नाथ दर्शन। आप उसको रुकाओ मत, आप उसको कहो जिस अच्छे तरीके से दर्शन, कितने भाग्यशाली है कि वो देखो जगन्नाथ जी को दर्शन करे, कितना प्रेम भाव से वो जगन्नाथ जी को दर्शन करे। महाप्रभु कहने लगे गोविंद को, जगन्नाथे आविष्ट इहार तनु मन प्राणे मोर स्कंदे पद दिया चे ताहा ना ही जाने। वो आपने गलती के कारण मेरा स्कंद में उनको पायल नहीं रखे उन्होंने। जगन्नाथ भाव दर्शन है, जगन्नाथ आविष्ट इहार तनु मन प्राणे, मतलब जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए उनका मन इतना विचलित हो गए थे कि उनका पीछे सामने कौन खड़ा है उनको कुछ पता नहीं। तो महाप्रभु स्वयं बता रहे कि जगन्नाथ आविष्ट इहार तौन मनु प्राणे मोर स्कंदे पद दिया चे ताहा नहीं जाने। तो देखिए एक सन्यासी होकर एक माताजी को गुणों कीर्तन कर रहे हैं, और यही श्री चैतन्य महाप्रभु जब एक बालिका का मुखारो बिंद से जगन्नाथ अष्टकम सुन रहे थे, सॉरी गोविंदा अष्टकम, जिस गोविंदा अष्टकम सुनने का समय श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम विरह इतना जागृत हो गई थी कि उन्होंने उस बालिका का पीछे भागने लगे। तब गोविंद जाके रुका कि महाप्रभु आप ये क्या कर रहे हो, आप एक महिला का पीछे भाग रहे हो, अगर कोई व्यक्ति देखे कि सन्यासी होकर एक महिला का पीछे भागे तो काल आपका अवस्था क्या होगा। तो महाप्रभु अचानक संकित हो गए, शक लग गए उनका मन, अरे मैंने तो बड़ा गलती कर रहे थे, इसलिए मैंने तो बहुत बड़ा गलती कर दी इसका ऊपर। तो उन्होंने गोविंद को कहने लगे, ओहो भाग्यवती ये बंदी यार पाए यार प्रसादे ओचे आरती आमार ना है। तो कहने कि देखो जिस महिला मेरा स्कंद में रखकर जगन्नाथ जी को दर्शन कर रहे थे उनका कुछ अपराध नहीं है, लेकिन अगर मैंने भाव रूप से जाकर कृष्ण भाव नहीं आते थे कभी जगन्नाथ जी को श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय में हर समय राधा भाव दूति महिमान्वित सनाहा, राधा भाव लेकर उन्होंने हर समय लेते थे। तो इसी राधा भाव में जब उन्होंने गोविंद अष्टकम सुन रहे थे तब उसी लड़के का पीछे उन्होंने भागना चालू किया, लेकिन गोविंद ने उनको रुका है। ते यही है महान जन शिक्षक लोक शिक्षक वाला सर्वदमोदर सॉरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं चेतन चेतन इसमें कि श्री चैतन्य महाप्रभु जन शिक्षक लोक शिक्षक जनतार शिक्षा करे लोक शिक्षक तारी व्यक्ति को सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इसी धराधाम में आपने को प्रकटित किए। आज जगन्नाथ जी को दर्शन करने के बाद उन्होंने पहुंच गए थे काशी मिश्र का घर में। ये काशी मिश्र कौन है खरा परिचित करा देता हूं, जिन्हें चेतन 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 मंगल नहीं पड़े हुए उनको जरूर पता होना चाहिए कि एक काशी मिश्र जो है यह है पुरी जगन्नाथ मंदिर का सेवाध्यक्ष, जिन्होंने अपना हाथ में जगन्नाथ जी को सेवा कौन किसको देना है बांटना है वो देखभाल करते रहते थे, जिसको कहते कि सेवाध्यक्ष। तो काशी मिश्र का घर में पहुंच गए श्री चैतन्य महाप्रभु, साथ साथ लेकर गए सार्वभौम भट्ट सर्वदम सबको लेकर गए। तो सार्वभौम भट्ट कहने लगे जी महाप्रभु आपने तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए, लेकिन आज आपको मैं मेरा मन में बहुत दिन तक ये इच्छा थी कि मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में जितने सारे भक्त है सबको मैं आपके साथ परिचित कराऊंगा। तो महाप्रभु कहने लगे कत सुखी होइल मोर प्राण हृदय क्षेत्रवासी दर्शने होइल अकुतय, मतलब कि अरे मैंने मेरा जीवन धन्य कर दिया, मैंने आपने आपका मुखरविंद से बताया आपने कि क्षेत्र धाम में जितने वैष्णव है परम भक्त है वो मेरे को मिलने के लिए आए, मतलब मेरा जीवन धन्य हो गए। तो सार्वभौम भट्ट कहने लगे सुनो सुनो महाप्रभु सुनो एक कथा सर्वप्रथमे आयलु तहा जनार्दनेर व्यथा, मैं आपके सामने पहले जिसको लेकर आया इसका नाम है जनार्दन दास, इसका जनार्दन दास का व्याख्या चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन किए हैं, चैतन्य चैतन्य इतना डिटेल्स में नहीं है लेकिन वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत इसका वर्णन किए हैं। तो सार्वभौम भट्ट इस जनार्दन दास को लेकर आए काशी मिश्र का घर में महाप्रभु को मिलाने के लिए। जब महाप्रभु को मिलाने के लिए लेकर आए तो सार्वभौम भट्ट कहने लगे महाप्रभु सुनो तब एक कथा तुम्हारो सामने उपस्थित होइलो जगन्नाथ दास कथा जनार्दन दास कथा, मतलब इसका नाम क्या है, मतलब इनका नाम जनार्दन। तब सब सार्वभौम भट्ट जो बताए कि इनका सेवा है इस अनवसर काल मुहूर्त में जगन्नाथ जी को अंगोराग करना, मतलब जगन्नाथ जी को अच्छे तरीके से पेंटिंग के द्वारा श्रृंगार करना। तो सार्वभौम भट्ट ने एक बार बता दी उनको, दूसरी बार फिर पूछने लगे कहो तो तुम्हें किचू एरो सेवा अंगीकार की सेवाए आचे ए सदा संगकार, मतलब आप जरा आप फिर आओ एक बार आप मेरे को बताओ कि जिसको आपने लेकर आए इसका सेवा क्या है। तो सार्वभौम भट्ट कहने लगे इनका सेवा है इस अनवश्य काल मुहूर्त में, मतलब ये 15 दिन में इनका सेवा है जनार्दन का जगन्नाथ जी को अच्छे तरीके से श्रृंगार करना। जगन्नाथ जी को सिंगर ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम अपना सिंहासन को उठकर एक जनार्दन को पकड़ लिए, भाग्यवान भाग्यवान कहो तुम यार तुम्हारो नामे ते आज लोघी भी तुम्हार मोनिमा मोनिमा कोही डाके की छुतारे तुम्हारो नामे ते आज मोहिमान नित करे, वृंदावन दास ठाकुर इसको वर्णन करे चैतन्य भागवत ग्रंथ में। मोनिमा का अर्थ है मोनिमा मोनिमा शब्दे संबोधित तुम्हारो नाम कार्य करीब सवार, कहले कि अरे मोनिमा 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 शब्द तो कोई सुना नहीं। सार्वभौम भट्ट एकदम चमकित हो गए, बहुत सारे क्षेत्रवासी गौड़ी वैष्णव भक्त आए श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। तो महाप्रभु मोनिमा मोनिमा बोलकर जगन्नाथ दास सॉरी जनार्दन दास को उन्होंने पकड़ ली आलिंगन की उन्होंने, और इस मोनिमा शब्द को सुनकर आश्चर्य हो गए। मोनिमा का अर्थ होता है ड्यू रिस्पेक्ट संबोधन करना, जैसा कि आपका घर में कोई मेहमान वगैरह आए तो मेहमान को अगर अच्छे तरीके से स्वागत करना है, कोई मेहमान जब घर में आते तो घर वाले का कर्तव्य होता है मेहमान को अच्छे तरीके से स्वागत करना। तो महाप्रभु को मिलने के लिए जनार्दन दास आए, तो जनार्दन दास को श्री चैतन्य महाप्रभु मोनिमा मोनिमा कहे संबोधित किए। तो सार्वभौम भट्टी कहने लगे, महाप्रभु अब मेरे को पता नहीं है आप कुछ शब्दों को आप उच्चारित किए हो। कभी कभी सार्वभौम भट्टी महाप्रभु के साथ मजाक भी करते थे। और काशी मिश्र का घर उन्होंने क्यों चुना था, इसका बहुत ही अच्छे से इसका व्याख्या है शास्त्रों में, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा आज। तो इस मोनिमा शब्द को उन्होंने व्याख्या की कि श्री चैतन्य महाप्रभु जनार्दन दास को आलिंगन किए मोनिमा शब्द के द्वारा। जब मोनिमा शब्द के द्वारा उन्होंने आलिंगन कर लिए तो सब लोग आश्चर्यित हो गए कि मोनिमा शब्द को क्यों उन्होंने उच्चारित किया। मोनिमा का अर्थ होता है ड्यू रेस्पेक्ट, मतलब संबोधित करना। लोचन दास ठाकुर इसको वर्णन कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ड्यू रेस्पेक्ट का ऊपर संबोधित करने वाले का ऊपर बहुत ही जानकारी थी। क्यों उन्होंने संबोधित की, संबोधित करने का एक ही कारण था कि इन्होंने इतने भाग्यशाली व्यक्ति है, इन्होंने इतने भाग्यशाली है कि जिनका हाथ से स्वयं अंगो राग हुए जगन्नाथ, इसके लिए उन्होंने इतने भाग्यशाली है कि आपने इतना भाग्यशाली हो कि आपका हाथ के द्वारा आपने जगन्नाथ जी को अंगोराग के मतलब पेंटिंग बगड़ किया। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु उनको संबोधित किए। आज संबोधित का जो अर्थ है उसको कहते कि मोनिमा मोनिमा, तब मोनिमा एक शब्द होता है। तो आइए आज हम लोग फिर चर्चा कर लेते हैं काशी मिश्र का घर उन्होंने क्यों चुना था। इस जगन्नाथ क्षेत्र में आने का पहले सार्वभौम भट्ट चिंतन कर रहे थे कि महाप्रभु आ रहे, ऐसा कोई जगह उनको देना चाहिए जहां पे बैठकर जगन्नाथ जी का बारे, क्योंकि स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जय गौर जय कृष्ण जय श्री जगन्नाथ। तो सार्वभौम भट्ट प्रतापित के साथ वार्तालाप चालू किया कि काशी मिश्र का घर मेरे को लेना है, क्योंकि काशी मिश्र इसमें वर्णन किया है शास्त्र में कि राज पुरोहित राज मतलब जगन्नाथ मंदिर का जिन्होंने जिसको कहते हैं कि सेवाध्यक्ष, इस ग्रंथ में इसका ऊपर वर्णन किया काशी मिश्र का ऊपर कि काशी मिश्र राज पुरोहित इस जगन्नाथ देव का पूरा सेवाध्यक्ष और सर्वाधिकारी जिसको कहते हैं। आर जगन्नाथ मिश्र के साथ काशी मिश्र के साथ राजा प्रतापित का क्या संबंध है, शास्त्र में वर्णन किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र का घर में उपस्थित हो गए तब काशी मिश्र उनको दंडवत प्रणाम किए और उनको अच्छे तरीके से स्वागत करके उनके घर में लेकर आए। मोरे पिछू कहोती भाग्यवान आज भाग्य होते अन्वेषण करी हो तुमार। तो काशी मित्र सोचने लगे कि मैंने कितना भगवान व्यक्ति हूं कि मेरा घर में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु रुकने के लिए आ रहे, मैंने कितना भगवान व्यक्ति। उनको अच्छे तरीके से स्वागत वगैरह किए काशी मिश्र ने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्र को चतुर्भुज रूप दर्शन कराए, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप दर्शन करा दिए। आज जगन्नाथ जी का एक से एक लीला, जैसे कल मैंने बताया था कि खाजा का लीला का ऊपर, भगवान का लीला भक्त के साथ ही होता है। जैसा कोई हम लोग जगन्नाथ जी को जब दर्शन करते हैं किसी को पता नहीं चलता कि जगन्नाथ जी का शरीर में बाल है कि नहीं। तो उड़ीसा का राजा एक दिन आए जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, राज पुरोहित गए और राजा को संबोधित करने के लिए अच्छे तरीका से। जैसा कोई बड़ा बड़ा व्यक्ति जब मंदिर में आते हैं तो हम लोग उसको पुष्प हार चढ़ा देते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं कि मान देना। वैष्णव का कर्तव्य होता है दूसरे को मान देना। तो उड़ीसा का राजा पहुंच गए जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए, तो पुरोहित आकर उनको अच्छे तरीके से स्वागत वगैरह किए और जगन्नाथ जी का एक प्रसादी पुष्पहार इसी राजा का गला में चढ़ा दिए। राजा ने उसको बांस लिए बड़े अच्छे तरीका से, गंध लेपन सूर्य मज्जित तुम्हार। तो उन्होंने ये बांस लेकर जब उन्होंने प्रणाम कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि अरे ये पुष्पहार का ऊपर किसी का बाल आ गए। तो राजा ने क्रोधित हो गए सुनकर, कहने लगे कि पुरोहित मैंने आपको नियुक्त किया हूं इस सेवा में, अरे आप मेरे को दूसरे का प्रसाद दूसरे का हार आप मेरे को अर्पित कर रहे हो। तो पुरोहित एक दिन चमुकित गए सुनकर, बोलते नहीं नहीं ये जगन्नाथ जी का प्रसादी हार मैंने आपको दे रहा हूं। बोलते ये हो ही नहीं सकता है, जगन्नाथ जी का पुष्प हार में प्रसादी हार में मैंने आज तक कभी इसका बाल नहीं देखो, ये कैसे बाल आ गए सामने। तो राजा कहने लगे देखो पुरोहित मैंने आपको नियुक्त किया हूं इस सेवा में, आप मेरे साथ मजाक मत करो कभी भी, मैं चाहूं तो मैं आपको एक सेकंड इधर से निकल सकता हूं। तो वो परीक्षा लोई बुझतुमा। तो राजा ने कहने लगे ठीक है आप बोल रहे हो ना कि आपने जगन्नाथ जी का ये बाल जो है जगन्नाथ जी का है, ठीक है मैं कभी भी आकर इसका परीक्षा लेना चाहता हूं। तो पुरोहित कहने लगे कि तथास्तु महाराज आप कभी भी आओ। लेकिन जब राजा निकल गए मंदिर से तब पुरोहित का मन में डर आ गए, बोले अरे मैंने तो किस तरीके से झूठ बोल दिया लेकिन मेरे को भी पता नहीं ये बाल किसका है। तो उन्होंने जगन्नाथ जी के सामने जाकर इसके लिए कहते कि भगवान जय जनार्दन जनार्दन भाव ग्राही मुरली तुमा। तो जनार्दन रूप लेकर जब उसी पुजारी जगन्नाथ जी के सामने गए तो कहने लगे हे जगत नाथ आपको भी पता है मेरे को भी पता है कि मैंने तो झूठ नहीं बोला हूं, लेकिन ये बाल कहां से आ गए मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन दूसरा दिन तो मैंने बाल कभी दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि आपका शरीर में तो कुछ बाल है। मस्तक मुंडन तुमार परिक्रमा में इसका वर्णन किया है लोचनदास कृष्ण, मस्तक मुंडन तुमार तुम्हारा मस्तक में कभी तो मैंने कुछ बाल वगैरह कुछ देखा नहीं, मुंडन था वो तुमार। तो ये बाल कहां से आ गए मेरे को कुछ पता है नहीं, लेकिन दूसरा दिन अगर राजा आ गए मेरे को परीक्षा लेने के लिए मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, अभी आपका हाथ में मैंने जीवन अर्पित कर दिया हूं, आप चाहे तो आप मेरे को रख भी सकते हो, अगर आप चाहे मेरे को मर भी सकते हो। के तुम्हारे राखी ते पारे एक बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन किए कि भगवान अगर चाहे किसी को मर भी सकते हैं, भगवान अगर चाहे तो किसी को उठा भी सकते हो। तो एक दिन अचानक राजा पहुंच गए जगन्नाथ मंदिर में, आके उन्होंने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम की, पुरोहित को बोला है जब पुरोहित आओ मैं अंदर जाना चाहता हूं नाट मंदिर का अंदर जहां पे स्वयं भगवान विराजमान है वह को मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि भगवान का सही बाल है कि नहीं। तो पुजारी का एकदम थरहरी कंप कांप रहा है उन्होंने, अभी मेरा जिंदगी खत्म, राजा को मैंने अगर बाल दिखा नहीं पाए तो मेरा जिंदगी बर्बाद मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। और जगन्नाथ जी को कहने लगे सुनो सुनो जगन्नाथ मोरो एक एक कथा अंतिम समय आजी कोहिनो की बैठा तुम्हारो सामने आजी आमी की कोहिनो आर आमारो दंड दाओ तुमी करो बारो बार। कहने लगे मैंने तो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला हूं लेकिन आज मेरा क्या हाल होगा, मैंने आपका जीवन अपना शरीर को मैंने आपका चरण में समर्पित कर दिया हूं, आप अगर चाहे तो मेरे को बचा भी सकते हो, अगर आप चाहे तो मेरे को मार भी सकते हो। के तुम्हारे राखी ते पारे तुम्ही तो मारी वे जारे के तुम्हारे राखी ते पारे। भक्तिविनोद ठाकुर के एक भजन बहुत ही सुंदर भजन लिखे है इसके ऊपर, अगर भगवान चाहे किसी को मर भी सकते हैं, भगवान चाहे किसी को जिंदा भी रख सकते हैं। तो राजा ने पहुंच गए एकदम अंदर, कहने लगे पुजारी आप मेरे को दिखाओ कि भगवान जगन्नाथ जी का बाल कहां पे है। तो पुजारी तो एकदम कंपमान हो गए, एकदम डर रहे पूरा शरीर। तो राजा को लेकर गए अंदर तक, बोलते महाराज आप ही देखो आप ही दर्शन करो। तो पुजारी भी आश्चर्य कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों विग्रहों का अंदर बहुत ही सुंदर बाल है। शास्त्र में वर्णन किए कि राधा रानी का जो बाल का वर्णन किए उसी समय उसी मुहूर्त का, दुइयो बेनु तारे शकर सन धारे, मतलब सुभद्रा वाणी के जो बाल है जो दो बेनी का माफिक बना के रखती है, जैसे कि एक 12 साल 13 साल का लड़की दो बेनी बांधकर रास्ते से चलती है, तो उसी अवस्था आप सोच लीजिएगा। तो राजा ने आश्चर्यचकित हो गए, अरे मैंने तो कभी देखा भी नहीं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की इसी तरीके से बाल रहते हैं। तो राजा ने क्रोधित होकर पुजारी को पूछना, पुजारी आप मेरे को दूसरा कुछ मत सोचो, आप भगवान को लगता है पोड़ो चूल्हा पोराइया दिलो तारे यार, पोड़ो चूल्हा का होता है वीक, मतलब कभी कभी होता है ना स्टाइल के लिए वीक पड़ना पड़ता है, तो वीक डाल दिए। तो राजा का मन में विचार आ गए कि पुजारी मेरे को मूर्ख मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं, मूर्खता बसे तो नहीं चिंतनीय आज, बोलते आप मेरे को मूर्ख व्यक्ति मत सोचो कभी, मैं मूर्ख नहीं हूं लेकिन आप मेरे को मूर्ख सोचते हो, इसके लिए लगता है आपने ऊपर में पोरो चूल्हा लगाइया दिलो ताड़िया, बोलते आपने इसके ऊपर पोरो चूल्हा मतलब उइग लगा दिए। तो पुजारी कहने लगे कि सुनो सुनो राजा तब मोहदय प्राण आमारो अस्तित्व आदि जीव कर दान, बोलते मैंने जो भी कुछ बोला हूं आपको अगर आप चाहे मेरे तो कुछ भी कर सकते हो। तो राजा ने कहा कि अरे अपने वीक बनाकर भगवान को मेरे को बोल लो कि भगवान का बल है, बोलते नहीं राजा मैंने कुछ भी नहीं किया हूं, अगर चाहे तो आप परीक्षा ले सकते हो। तब राजा ने क्या की, राजा जगन्नाथ जी का विग्रह का सामने जाकर जो बाल था ना बाल को पकड़कर खींचने लगे, और जब उन्होंने खींचा जगन्नाथ जी को बाल का एकदम पूरा ताकत के साथ, राजा ने सोच लिया कि ये वीक है परचूला है, इस परचूला को अगर मैंने खींच लिया तो पूरा पूरा परचूला उठ के आ जाए मेरे सामने और उसी पुजारी को मैं दंड देता हूं। देखिए भगवान जगन्नाथ जी का लीला, जब राजा ने पूरा चूल को पूरा बाल को पकड़ लिया जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी के मस्तक से खून निकालने लगे। इस खून को देखकर इतने खून निकालने लगे कि राजा पूरा चमकित हो गए। राजा कहने लगे कि पुरोहित आप ही सच्ची हो, मैंने भगवान को परीक्षा लेने के लिए आया था, भगवान मेरे को पूरा साजा दे दिए, ये भगवान का लीला है। इसी तरीके से भगवान लीला विलास करते रहते हैं। काल मैंने बताया था कि खाजा का ऊपर इस प्रवचन खत्म होने के बाद बहुत व्यक्ति मेरे को पूछने लगे कि प्रभु जी ये खाजा नाम क्यों हुआ था, वो भी मैंने बता भी दिया था कल, फिर और एक बार रिपीट कर देते जिनने कल नहीं आए। खाजा का अर्थ होता है भगवान तू खा लेना, तू खाजा मतलब तू खा लेना। जब उस मुसलमान व्यक्ति और मिठाई बनाकर लेकर आए साथ में, तब उड़िया का जगन्नाथ का पंडल लोग उसको पकड़ के रख दिए, लेकिन उनका मन में इतना प्रेम विगलित तो हो गए सामने, तो वो जाना चाहता है जगन्नाथ जी का सामने, लेकिन पंडालों ने अपना ताकत के द्वारा उसी मुसलमान को रुक दिए। तब उनका मन में इतना आनंदित हो गए, आनंद चिन्मय रस भाव दाविता, तो आनंद भाव से मुसलमान ने कहने लगे कि देखो मैं आपका सामने जाना चाहते थे लेकिन ये लोग मेरे को रुकाए, तो मैंने जो भी कुछ लेकर आया हूं तू खा जाना मतलब तू खा ले। उसी समय से वो मिठाई का नाम हो गए खाजा। जिन्होंने जगन्नाथपुरी गए उनको जरूर पता होगा आनंद बाजार बोल के एक जगह है, जिस आनंद बाजार में 24 घंटा जगन्नाथ जी का प्रसाद मिलते हैं। चलो गोपा जी बताते हैं, इस आनंद बाजार का इतना महत्व है कि आनंद बाजार में अगर कोई भी व्यक्ति गए लेकिन उनका जेब में भी पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी आनंद बाजार में बैठकर अगर जगन्नाथ जी का सामने जाकर कोई भी प्रार्थना करे तो जगन्नाथ जी कोई ना कोई भावना से कोई ना कोई तरीका से उनको प्रसाद भेज देते हैं। अगर किसी को अगर इसको ऊपर परीक्षा लेना है टेस्ट करना है कि हाँ चलो मेरे पास कुछ नहीं है, उनको अकेला जाना चाहिए कुछ भी नहीं साथ मात, जाकर उधर बैठ जाइए तो देखिए जगन्नाथ जी कृपा करके जगन्नाथ जी का कृपा आपको पास भेजेंगे, अगर सही तरीके से हृदय से अगर आपने जगन्नाथ जी को बुलाएंगे तो। जगन्नाथ जी के प्रसाद है जिसका नाम है कि पकल भात, जो उड़ीसा में रहते हैं इसमें कोई अगर उड़ीसा वाला है तो उनको जरूर पता होगा कि एक पकल भात जो कि जगन्नाथ जी का सबसे पसंद, सब पसंद करते हैं जगन्नाथ जी, एक तो मिठाई दूसरा है पकल भात। इस पकल भात का महत्व तो क्योंकि आज एक भक्त मेरे को बताया था कि ये पकल भात का बारे, इसके पहले भी मैंने पकल भात का बहुत वर्णन किए थे, इसके पिछले साल भी मैंने वर्णन किया था जगन्नाथ कथा में। तो इस पकल भात का महत्व तो क्या है आप सबको पता है, ये अक्षय तृतीया का दिन से जगन्नाथ जी का हर साल ये तीन तीन नए नए रथ बनते हैं, और इस जगन्नाथ रथ यात्रा जब खत्म हो जाते हैं तो इसी लकड़ी के द्वारा जगन्नाथ जी का भोग बगड़े बनते थे, जलानी बोलते हैं जलानी, जैसे आज के दिन में हम लोग गैस के द्वारा कुकिंग करते हैं, जगन्नाथ जी का भोग गैस के द्वारा नहीं बनते, इसी लकड़ी के द्वारा बनते हैं। वो रथ को तोड़कर उसी लकड़ी के द्वारा भगवान जगन्नाथ जी का भोग बगड़े बनते रहते हैं। इस पकल भात जिन्होंने जगन्नाथपुरी गए उनको जरूर पता होगा कि सुबह जाइए जगन्नाथ जी का वो आनंद बाजार में जाकर अगर पकल भात आज साथ में कुछ मिर्ची वगैरह लेकर आराम से खा सकते हैं, बहुत सस्ता में मिलते हैं वो। तो इस पकल भात का महत्व क्या है आपको पता है कि जगन्नाथ जी के जो पंडा जिसको बोलते कि द्वैता संप्रदाय, द्वैता संप्रदाय का सेवा रहते है जगन्नाथ जी को भोग बनाने, जिन्होंने जगन्नाथपुरी गए उनको पता होगा जरूर कि इतने एकदम तगड़ा तगड़ा मोटे मोटे सब काला काला, तो वो लोग जगन्नाथ जी का भोग वगैरह बनाते हैं, और एक साथ एक से एक ऊपर टोकरी लगाकर लेकर आता है जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए। और पकाल भात का महत्व क्या है, एक दिन पंडा लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से भगवान जगन्नाथ जी के लिए चावल बना दिए, लेकिन चावल तो बहुत बनाए, जगन्नाथ जी को तो कभी मतलब हाथ सूखा नहीं रहना चाहिए, हाथ कभी सूखा होना नहीं चाहिए कि जगन्नाथ जी वादा किए थे कि मेरा हाथ कभी सूखा नहीं रहे, इसके लिए जगन्नाथ जी 24 घंटा खाते रहते, 3 घंटा छोड़कर 21 घंटे वो खाते रहते हैं। इसके लिए कल भी मैंने बताया था कि जगन्नाथ जी का कुछ भी फेस्टिवल होता है ना उसमें कुछ फास्टिंग नहीं रहता, उपवास नहीं है। जगन्नाथ जी का कुछ भी फेस्टिवल जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, जगन्नाथ जी का कुछ भी फेस्टिवल हो कभी उसमें फास्टिंग नहीं, फिस्टिंग तो बजी बजे, नो नीड टू डू दैट फास्टिंग, ऑलवेज फिस्टिंग फॉर जगन्नाथ फेस्टिवल। इसका अर्थ क्या है, मतलब जगन्नाथ जी खुद खाते हैं और खिलाने भी उत्साह है, अपना खा लेते हैं जो भी कुछ मिलते हैं, भगवान जो भी मतलब भक्त लोग जो भी देते हैं ना प्यार से तो जगन्नाथ जी खा लेते हैं और साथ साथ भक्त को भी खिलाते भी है। ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम, क्योंकि भगवान स्वयं पूर्ण है। अगर आपका मन में यह विचार है चलो मैंने भगवान को दे दिया हूं उसके बाद मेरे पास आ जाए मैं टकटक खा लिया, ऐसा नहीं है, तब भगवान इसको गौर नहीं करते। कल मैंने बताया भी था एक कहानी को बहुत सुंदर तरीका से। इस पकल भात एक दिन पंडा लोगों ने बहुत मतलब चावल बनाए, इस चावल का उड़िया में कहते कि भात, बंगाली में भी भात बोलते हैं, तो भात बहुत बना ली। पकल शब्द कैसे आ गए सामने, तो इतने चावल बना लिए और इतने गर्मी इस चावल का अंदर से लगता है कि पूरा आग आ रहा है, तो पंडा लोगों ने तो पूरा बनाकर एकदम भर के लेकर गए जगन्नाथ जी को भोग चढ़ाने के लिए। जब भोग चढ़ाने के लिए गए तो देखा कि उसका अंदर से पूरा आग आ रहा है, तो पुजारी कहने लगे अरे ये जगन्नाथ जी को मैं कैसे खिला सकता हूं, जगन्नाथ जी अगर क्रोधित हो गए ये चावल खाकर तो मेरा क्या हाल होगा, मैं ही खिला नहीं सकता कभी। दूसरा पंडा है, दूसरा पंडा कहे चलो जगन्नाथ जी मेरा प्यारे है मैं जो भी कुछ दूंगा तो जगन्नाथ जी खा लेंगे, तो उन्होंने लेकर आया साथ में उसी भात उसी अन्न चावल को, तो जब चावल को लेकर आया कि देखो उसके अंदर से आग निकल रहा है पूरा, बोलता अरे कैसे खिला सकता हूं। भगवान जनार्दन भावो गए जनार्दन, भक्त का मन में है जगन्नाथ जी को खिलाने का, लेकिन डर रहा है, मतलब डर रहा है इसके कारण कि उसका अंदर से पूरा एकदम आग निकल रहा है। इसी तरीके से मैं कैसे खिला सकता हूं भगवान? अगर भगवान इसी चावल वगैरह खाकर मुख वगैरह जल जाए तो मेरा क्या हाल होगा? तो एक से एक पुजारी गए और वापस आए, तो पुजारी लोग सोचने लगे कि अभी क्या करना है, लेकिन भगवान को तो खिलाने का समय भी हो गए। चावल के साथ बहुत वगैरह व्यंजन भी आ गए, लेकिन चावल बिना मैं कैसे खिला सकता हूं भगवान? तो पुजारी लोग सब इकट्ठे होकर जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहे, आप कुछ सलाह दो, अरे आप तो मेरा परम प्रिय हो, मेरा मित्र हो, मेरा सखा हो, आप सब कुछ हो, आपके लिए मैंने इतना कष्ट करके मैंने चावल वगैरह बनाकर लेकर आए, भले भी गलती के कारण थोड़ा जल रहे हो, लेकिन आपको तो खिलाना है, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा इसमें। कि पांडा के साथ जगन्नाथ जी का इसी तरीके से मन, आज का दिन तो पांडा लोग ने बड़ा क्रोधित हो जाते हैं कभी कभी, फिर भी भोपाल जी बताते हैं कि जिन्होंने जगन्नाथपुरी जाते हैं दर्शन करने के लिए श्री क्षेत्र धाम में, कभी भी जाकर पांडा के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करने का। अगर आपने कोई भी तरीका से पांडा की को साथ अपने लड़ाई झगड़ा किए हो तो जगन्नाथ जी आपको क्षमा नहीं करेंगे। अगर आपको उनका बात को पसंद नहीं हो रहा है, उनको आप अवॉइड कर सकते हो, भोपाल जी कहते जस्ट ट्राई टू अवॉइड देम, उनको आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन उनके साथ झगड़ा विवाद कलह कभी भी नहीं जाने, क्योंकि वो जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय रहता है जगन्नाथ जी का पांडा। तो उन लोगों ने एकदम मीटिंग बना ली कि क्या करना है अभी, तो चलो सब लोग हम लोग जगन्नाथ जी के पास ही जाते हैं, उनके लिए बना के लेकर आए ना, देखिए हम लोग कैसे बोल सकते हैं, तो उनके लिए बना के लेकर उनको सलाह देना है ना क्या करना है अभी। चलो हम लोग जाते हैं जगन्नाथ जी के पास, जगन्नाथ जी के पास पहुंच गए, एक प्रधान पुरोहित गए सामने, जाकर कहने लगे कि देखो जगन्नाथ आप मेरा परम प्रिय हो, आपका सामने मैंने आज कुछ गलती किया हूं। क्या गलती है? कि ये जो चावल वगैरह बनाए ना इसमें ज्यादा आग निकल रहा है, तब भी आग निकल, देखिए जगन्नाथ जी की लीला है, क्योंकि एक नया आइटम जगन्नाथ जी को खाना है, इसके लिए भगवान ने ये लीला को प्रकटित की। किस तरीके से? वो आग जब तक नहीं निभे तो जगन्नाथ जी को खिला नहीं सकते कोई। तो पंडित लोग जाकर पूछने लगे कि देखो जगन्नाथ आप मेरा सबसे प्रिय हो, आप लोग इतना साल तक आपको सेवा कर रहे हैं, भले भी गलती के कारण कुछ हो गए, आग निभ नहीं रहा है, तो आपने कुछ सलाह दे दो करना है। यही से जब कहने लगे साथ साथ में, तब देखा कि जगन्नाथ जी का एक हाथ से कुछ पानी निकालना चालू किया। इसका लीला का वर्णन बहुत ही सुंदर वर्णन किया जगन्नाथ लीला क्षेत्र ग्रंथ में, कि जगन्नाथ जी का एक हाथ से पानी निकालना चालू है। तब पंडा लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये पानी कहां से आ रहा है? तब देखा कि जगन्नाथ जी के हाथ से वो निकालना चालू हो गई वो पानी को। तब उसी पानी जब देख लिए पंडा लोगों ने, सोचे कि ये देखो ये जो पानी आए ना, ये पानी के द्वारा फिर कुछ करना है, इस पानी को उसी चावल का अंदर डाल देना है। तब उनका दिमाग चढ़ गया, हाँ पानी ही डालना है। तब पानी डाल दिए उसमें, और इसी गर्म चावल के ऊपर जब पानी डालते हैं उसको कहते कि पकल भार, इसको और एक नाम है, इसको वर्णन भी किया है शास्त्र में, पंता भार, जो कि जगन्नाथ जी का सबसे अधिक पसंद है पकल भार, जो उड़िया में बोलते हैं पकल भार, और दूसरा दूसरे संप्रदाय वाले पंता भार कहते हैं इसको। ये पंता भार जगन्नाथ जी हर दिन सुबह खाते हैं। आनंद बाजार में जिन्होंने गए उनको जरूर पता होगा, सुबह आप जाइए जगन्नाथ जी को दर्शन करने के बाद आनंद बाजार में पहुंच जाइए, जाके आप देख लीजिए कि वो पकल भात मिलते हैं, बहुत सारे भक्त जाकर खा के भी आते हैं। तो ऐसा बहुत बहुत सारे लीला का वर्णन शास्त्र में वर्णन किए है। तो काशी विश्व का घर में उन्होंने पहुंच गए थे, तो पहला सार्वभौम भट्टाचार्य जनार्दन दास को लेकर आए महाप्रभु को मिलाने के लिए। जब महाप्रभु को मिलाने के लिए लेकर आए, महाप्रभु पूछने लगे इनका सेवा क्या है, तो सर्वम भट्टाचार्य कहने लगे इनका सेवा है अंगो राग दर्शन, इनका सेवा है अंगो राग करने का जगन्नाथ। तो महाप्रभु ने कितना एकदम आनंदित हो गए कि देखो कितने भाग्यशाली हो आप, आप जगन्नाथ जी का अंग को राग करते हो, आपने जगन्नाथ जी को श्रृंगार करते हो, मतलब आपने कितने भाग्यशाली हो आप। इसी तरीके से सर्वम भरचर एक से एक पुरुषोत्तम क्षेत्र का भक्तों को लेकर आए साथ साथ में, और बंगोदेश से भी बहुत सारे भक्त लोग आए, जिसका लीडर थे शिवानंद सेन, साथ साथ शिवानंद सेन के साथ नित्यानंद प्रभु भी गए, स्वरूप गए, बहुत सारे भक्त आए। सिर्फ जगन्नाथ जी का दर्शन साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करना है, इसके लिए गौड़ वैष्णव और पुरुषोत्तम क्षेत्र का वैष्णव, दोनों वैष्णव एक साथ होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए, जाकर दर्शन करने लगे। आज काशी मिश्र का घर इसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चुन लिए थे। एक तो कारण है कि वो जगन्नाथ मंदिर का एकदम सन्निकट में है, जहां के रहकर श्री चैतन्य महाप्रभु हर दिन जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जाते थे। जगन्नाथ जी को दर्शन करने का जो स्थान था श्री चैतन्य महाप्रभु का, वो है गुरु स्तंभ। गुरु स्तंभ के सामने खड़ा होकर श्री चैतन्य महाप्रभु हर समय दर्शन करने के लिए जाते थे। श्रील गोपाल लीलामृत में श्रील गोपाल भी वर्णन किए कि मैं तो जनरली ज्यादा जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे। उनका मन में एक दुख था। दुख का कारण क्या है? श्रील गोपाल जी वृंदावन बहुत बार गए, मायापुर बहुत बार गए, लेकिन जगन्नाथपुरी उन्होंने ज्यादा दर्शन करने के लिए नहीं गए। क्यों नहीं गए? उसका कारण था जो कि लीलामृत ने इसका व्याख्या किया है। मतलब आई लाइक जगन्नाथ, लेकिन मैं जगन्नाथ मंदिर में ज्यादा नहीं जाना चाहते थे। उसी समय श्री प्रभुपाद जी के पास सबसे अधिक सब विदेशी शिष्य थे। आज जगन्नाथ मंदिर में जिन्होंने गए उनको जरूर पता होगा कि वो जगह में लिखा है ओनली हिंदुइज्म आर अलाउड। तो श्री प्रभुपाद जी ये शब्द को देखकर बड़ा दुख लगते थे उनको, कि जिन्होंने जिनका मन में जिनका हृदय में कोई कम्युनल प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन उनका पंडा लोग भी देखो इस तरीके से बना के रख दिए कि ये मंदिर सिर्फ हिंदू के लिए, ओनली हिंदू फैमिलीज आर गोइंग इनसाइड, ऐसे लिखा है सामने। तो श्रील गोपाल जी जब ये देखते थे ना, तब भी उनका मन में बड़ा दुख आ जाते थे। इसके लिए श्रील गोपाल जी ज्यादा जगन्नाथ पूरी दर्शन नहीं किए। दो चार बार भी गए भी, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का बाहर में बैठकर अपना विदेशियों के साथ उन्होंने कीर्तन बगड़ी की, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा। श्री गोपाल जी का फेवरेट कीर्तन है जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदा, जो कि जगन्नाथ मंदिर का बाहर में बैठकर श्री गोपाल जी अपना विदेशियों के द्वारा वो कीर्तन करते रहते थे। उनका मन में बड़ा था, मैं अंदर चला जाऊं तो मेरा शिष्य लोग जा नहीं सकते, क्योंकि वैष्णव का अंदर ये भावना नहीं है कभी भी, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। जगन्नाथ जगत रो नाथ, जगत को जिन्होंने अंबर मतलब धारण कर सकते उसको कहते कि जगन्नाथ। लेकिन आप ना शिष्य को लेकर कभी वो अंदर नहीं जा पाए। श्री गोपाल नहीं, ऐसा पूरा भारत में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति भी शुरुआत में तत्कालीन समय में भारत में एक प्रधानमंत्री थी जिसका नाम है इंदिरा गांधी, जिनको भी ये जगन्नाथ पांडे लोग शुरुआत में अलाउ नहीं किए थे अंदर जाने का। अंतिम में शायद एक बार, मतलब मृत्यु होने का पहले एक बार शायद उन्होंने जगन्नाथ मंदिर दर्शन भी किए थे। तो श्री गोपाल जी इस दुख का कारण कभी भी अंदर तक नहीं जाते थे। भक्त लोग को लेकर उन्होंने गंभीरा तक पहुंच गए, काशी मिश्र का घर तक पहुंच गए, भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर का घर तक गए, समुद्र में नहाए भी, लेकिन भक्त को लेकर ज्यादा उन्होंने ये जगन्नाथ पुरी कमा ली। उनका एक परम प्रिय शिष्य थे श्री गोपाल जी का, जिनका देहांत हो गए कुछ दिन पहले, जिनका नाम है कीर्तानंद स्वामी। इस कीर्तानंद स्वामी एक बार श्री गोपाल जी को पूछे, गोपाल व्हाट इज अवर बैकग्राउंड, why public they are irritated in their seeing us? क्यों वही भक्त लोग इतना पंडा लोग क्यों गुस्सा हो जाते हैं हम लोग को देखकर? Why they are irritated? क्यों एक उत्तेजित मतलब गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कुछ वार्तालाप नहीं किए। प्रभुपाद जी ने बताया कि जस्ट स्टॉप इट नाउ, अभी आप चुपचाप हो जाओ, मैं बाद में बताऊंगा, लेट अस डिस्कस विद दैट। तो इसके कारण प्रभुपाद जी जगन्नाथ मंदिर में बहुत ही कम जाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी का मन में एक विचार था कि अगर ये जगन्नाथ के पंडा लोग इसी तरीके से भावना में रख दे तो एक दिन ये जगन्नाथ ये पुरुषोत्तम क्षेत्र छोड़कर दूसरा कोई जगह में ना भाग जाए। नित्यगत शुद्धगत प्राण तुम्हारो आ। प्रभुपाद जी का मन में जो विचार था, तो देखिए थोड़ा दिन बाद उड़ीसा में जगह है बहरमपुर जिसको बोलते हैं, तो बहरमपुर में ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का भक्त लोगों ने एक जगन्नाथ मंदिर बनाया बहरमपुर में। इस बहरमपुर में एज इट इज जैसे कि जगन्नाथ मंदिर का विग्रह है उसी तरीके से एक जगन्नाथ विग्रह स्थापित किए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा साथ सुदर्शन चक्र। तो प्रभुपाद जी का मन में ये वासना थी कि कभी भी अगर इसका हो जाए तो अच्छा है। तब उन्होंने जब ये दुख लगा अपना शिष्य का मन में, इसके लिए ये दुख को निभाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने विदेश में सैन फ्रांसिस्को में पहला रथ यात्रा चालू कर दी, क्योंकि भक्तों का मन में विरह आ गए कि जगन्नाथ जी का हम लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, कुरुक्षेत्र क्षेत्र में उपस्थित होकर भी जगन्नाथ जी का हम लोग नहीं कर पाए। इसी विरह भाव का कारण श्रील प्रभुपाद 1972 में पहला रथ यात्रा चालू किए थे अमेरिकन सैन फ्रांसिस्को। इस रथ यात्रा का द्वारा जिस रथ यात्रा जिस दिन है, तो श्री प्रभुपाद जी ने सुबह के प्रवचन में बताया कि प्रभुपाद लीला में इसका विस्तृत रूप से व्याख्या है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि प्रभुपाद जी बताए कि इतना दिन तक मेरा मन में भी दुख था कि मेरा शिष्य को मैंने लेकर जा नहीं सकते पुरुषोत्तम क्षेत्र में, ये जो सैन फ्रांसिस्को मंदिर जो है ये अभिन्न पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र का जो जगन्नाथ है ये अभिन्न जगन्नाथ है, इसी जगन्नाथ को अगर अपने दर्शन किए तो आपको जगन्नाथ दर्शन का सम्मान बराबर हो जाए। तो भक्त लोग ने बड़ा हो गए, आज रथ यात्रा चालू कर दिए थे उधर। जगन्नाथ को किस तरीके से प्रकटित किए वो भी सबको पता है कि जब एक दिन श्री गोपाल जी अपना कमरा में बैठे थे तो उनके एक शिष्य आए साथ में एक जगन्नाथ जी का छोटा विग्रह लेकर आए, तो प्रभुपाद जी सरप्राइज, प्रभुपाद जी एकदम चमकित हो गए देखकर, यार ये विग्रह आपको कहां से मिले विदेश में? बोलते मैंने उसी समय तो मॉल शब्द नहीं आए थे, लेकिन एक जगह था कि इंडियन वेजिटेबल मार्केट, इंडियन वेजिटेबल मार्केट में गया था मैंने कुछ सब्जी वगैरह खरीद करने के लिए, तो जाकर मैंने देखा कि एक स्टॉल में एक मूर्ति आई, तो मूर्ति को देखकर मेरे को बड़ा पसंद हो गया, तो प्रभुपाद जी के सामने मूर्ति को लेकर आए, प्रभुपाद जी उनका हाथ में जब वो मूर्ति को देख लिए तो प्रभुपाद जी ने सीधा अपना सिंहासन छोड़कर नीचे आ गए और उनको धन्यवाद प्रणाम किए। तो माता जी वक्त, अरे मैंने एक मूर्ति लेकर, कौन है मेरे को कुछ पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने धन्यवाद नाम किए। तो प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी आप मेरे को बताइए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसका पीछे कारण क्या है? तो प्रभुपाद जी बताए कि ये जगतेरो नाथ जगन्नाथ तुम्हारो कल्याण करी आज यही रात, बोलते तुमको आपको कल्याण करने के लिए जगतेरो नाथ जगन्नाथ जी इधर आए, इसको अच्छे तरीके से रखो, इसको हम लोग सेवा पूजा करेंगे, आप जाओ जाकर देखो, और इसके साथ और दो मूर्ति होगा और इसके साथ एक सुदर्शन भी होगा, आप जाओ जाके खरीद करके लेकर आओ, जितना भी पैसा मांगे आप ले लो। दूसरे दिन माता जी गई उसी मार्केट में, जाकर देखा कि बोबा जी जिसी तरीके से बताए जगन्नाथ जी को लेकर आए, लेकिन बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन उधर पड़े हैं। तो माता जी जाकर बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन को भी लेकर आए और प्रभुपाद जी को भेंट दे दी। तो देखिए शुद्ध भक्त का मन में जो रहते हैं भगवान उसको पूरा कर देते। प्रभुपाद जी का मन में दुख था कि आप शिष्य को मैं लेकर ये जगन्नाथ जी को मैं दर्शन नहीं करा पाए, इसके लिए स्वयं जगन्नाथ जी पहुंच गए थे अमेरिका में, और उसके द्वारा प्रभावित होकर प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनावृत्ति संघ का पहला रथ यात्रा 1972 में श्री प्रभुपाद जी की थी सैन फ्रांसिस्को टाउन में, पहला रथ यात्रा। श्री जगन्नाथ जी ने इतने कृपालु है, सबके लिए भगवान कृपा करते, जय श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। तो काशी विश्व का घर में श्री चैतन्य महाप्रभु इसी तरीके से वार्तालाप कर रहे थे कि काशी विश्व का घर उन्होंने क्यों चुना, राजा प्रतापनंद को किस तरीका से उन्होंने आशीर्वाद दिए। सार्वभौम भट्ट ने बहुत प्रयास की थी कि प्रतापनंद को आशीर्वाद दिलाने का, लेकिन भगवान जब तक नहीं चाहते, राजा रूप लेकर आए तो आशीर्वाद नहीं मिल सकता। राजारो रूपेरो धरोनी तुमार, कहते कि मैं इस राजा को मैं दर्शन नहीं करना चाहता हूं सन्यासी होकर। तब सार्वभौम भट्ट कह दिए कि राजा प्रताप रुद्र, आप एक काम करो, अगर आपको महाप्रभु का कृपा लेना है, इस रथ यात्रा आ रहा है, रथ यात्रा का सामने आप जगन्नाथ जी का जो रास्ता जी चल रहे, जिस रास्ता से जगन्नाथ जी जाएंगे उसी रास्ता का आप झाड़ू के द्वारा मार्जन करो, झाड़ू के द्वारा अगर मार्जन करोगे तो महाप्रभु आपका पर खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो कल मैं बताऊंगा कि राजा प्रताप रुद्र किस तरीका से श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होकर एक झाड़ू सेवा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ रथ यात्रा की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। सबके लिए प्रसाद है, खिचड़ी प्रसाद। मैं कल बताया था कि खिचड़ी का महत्व क्या है, ये कार्यक्रम चलेगी और 9 तारीख तक है, तो इसमें अंदर कभी भी मैं एक खिचड़ी प्रसाद श्री चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रिय है, श्रील प्रभुपाद भी सबसे ज्यादा पसंद करते थे खिचड़ी, जिसके लिए मैंने सोचा कि ये 9 दिन तक भक्तों को मैंने खिचड़ी प्रसाद दिलाऊंगा मंदिर का तरफ से। तो सबके लिए खिचड़ी प्रसाद है, एक खिचड़ी प्रसाद को ग्रहण कीजिए और जगन्नाथ जी और श्रील प्रभुपाद का कृपा को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण। तो कल मैं बताऊंगा कि राजा प्रताप रुद्र किस तरीका से जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त हुए थे। भागवतम की, चैतन्य चैतामृत की, शील प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, गौर प्रेमानंद। सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद लेकर जाइए। हरे कृष्ण।
महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतन राजन विश्वासो नैव जायते शरीर आविद्या जाल जड़ेन्द्रियता हे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभ माया सुदूरमति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा जाए सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्न अमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमेदा कोर्सी चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम रामा रामा हरे हरे। श्री श्री राधा गिरधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी गौर निताय महाप्रसाद की।